السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یکم مارچ 2019 بغداد شریف میں اس وقت ہم لوگ حضور اشرف الفقہا کے ہمراہ ہیں اور ایک مختصر سی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس سے ہم اور آپ بھی سنیں گے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والکرم وعلی واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام غزہ کی دو تین شعر سماعت فرما لیں.
لم یات نذیر کافی نظر, لم یات نذیر کافی نظر, مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راجی کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سر. البحر علا والموج تغا من بے کسو توفا, ہوش ربا من بے کسو توفا, ہوش ربا. مجدار میں بگڑی ہے ہوا, مجدار میں بگڑی ہے ہوا. نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش و سخا کا عطم, ایک سو پاک ابر کرم, ایک سو پاک ابر کرم. برسن ہائے رم جم رم جم, برسن ہائے رم جم رم جم. دو بود ادھر بھی گرا جانا, لم یاتی نذیر کافی نظر, مثلے تو نشد پیدا جانا.
اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے حضور اشرف الفقہا کی خطاب نایاب سے ہمارا محظوظ ہوں. حضرت کا خطاب شروع ہو, اس سے قبل حضرت کا استقبال کر لیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤه الا المتقون, صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں اور मेरे साथियों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको जांचने और परखने के लिए लोगों ने सिस्टम बनाया है और उसी सिस्टम के जरिए हर चीज को परखा जाता है। सोना है, सोना असली है कि खरा है या खोटा है, उसको परखने के लिए कसौटी ईजाद की गई। एक काला पत्थर बनाया गया है कि जिस पर घिसने से असली और नकली सोने का पता चल जाता है। इसी तरह से दुनिया की बहुत सी चीजें परखने के बाद ही पता चलती है। मुख्तसर से वक्त में एक मिसाल देकर मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह औलियाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को पहचानने के लिए कि वली कौन सच्चा है और कौन झूठा है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम बताया। जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी है, वो एक पत्थर है। अगर आपने उस पत्थर के अलावा, कसौटी के पत्थर के अलावा मार्बल का पत्थर इस्तेमाल करें या हम सोने को खरा और खोटा जांचें, तो मार्बल एक कीमती पत्थर जरूर है, लेकिन सोना खरा है कि खोटा है वो नहीं बताएगा। जो सिस्टम है परखने का, वही सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने भी अपने वलियों को जांचने और परखने के लिए एक सिस्टम बताया है। हम तो इस आयत करीमा में जो खुतबे के बाद मैंने पढ़ी है, फरमाया है कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अरबी जबान का ग्रामर है कि इन जो आता है ये नाफिया भी होता है, शर्तिया भी होता है। नाफिया का मतलब उसका माना नहीं, और उसके बाद इल्ला आता है। तो जहाँ इन नाफिया हो और उसके बाद इल्ला हसर आया है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ यही है। अब इसका तर्जमा ये होगा कि अल्लाह का वली वही है जो सिर्फ मुत्तकी परहेजगार, यानी तकवा परहेजगारी। तकवा और परहेजगारी किसको कहते हैं? शरीयत के मुताबिक काम करने का नाम है तकवा और परहेजगारी। सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम तकवा नहीं है, इस्लामी ड्रेस पहनने का नाम तकवा नहीं है, नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ तकवा नहीं है। नमाज हो तो शरीयत के मुताबिक, लिबास हो तो शरीयत के मुताबिक, हर काम शरीयत के दायरे में है तो अल्लाह ताला फरमाता है वही वली हो सकता है। सिर्फ शरीयत की पाबंदी ये है औलियाए किराम की पहचान, और इसके अलावा कोई दुनिया में पहचान नहीं। हवा पर उड़ना वली की पहचान नहीं, गौर से सुनना, पानी पर चलना वली की पहचान नहीं। अगर हवा पर उड़ना वली की पहचान होती तो मेरे गरीब नवाज कभी हवा में नहीं उड़े, जोगी जयपाल हवा में उड़े। अब जोगी जयपाल को आप वली मानेंगे, गरीब नवाज को वली मानेंगे? क्यों? हवा में उड़ना वलायत की पहचान नहीं है। आजकल मुसलमान इसीलिए गुमराह होता है, कोई चमत्कार देख लेता है उसको नमस्कार करने लगता, कुरान फरमाता है, कुरान फरमाता है इन औलियाहू इल्लल मुत्तकून, मेरा वली सिर्फ परहेजगार और शरीयत का पाबंद है। मुसलमानों यही एक मेयार है वली को जानने का। अब एक वाकया मैं पेश करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मेहरबानी है, पूरी दुनिया पर हुजूर का करम है, उनकी रहमत है, लेकिन हिंदुस्तान को खास तौर से हुजूर ने नवाजा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। एक रिवायत ज़ईफ है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके एक मर्तबा सहाबे कराम से फरमाया कि इधर से मुझे मोहब्बत के और हकीकत आज भी देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो मोहब्बत का मेयार है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे मुल्कों में आपको नहीं मिली। कुछ सऊदीया में जाओ तो नहीं मिली, बेहूदिया मिलेंगे, लेकिन जो अदब यहाँ पर है वो दूसरी जगह आपको नहीं। यहाँ भी आप देख लीजिए जो अदब गौसे पाक के मजार का यहाँ का हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करता है वो दूसरे भी कर पाते। हुजूर को बड़ी इस हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत थी, हुजूर ने इसीलिए तरीकत समझाने के लिए गरीब नवाज को और शरीयत समझाने के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो बुखारा और समरकंद के थे उनको हिंदुस्तान। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पढ़कर फारिग हुए तो उन्होंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मदीने मुनव्वरा चलकर पूरी जिंदगी मैं बारगाह रिसालत में गुजार दूंगा। इसी इरादे से मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए। जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए तो चंद दिनों के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नसीब हुई। हजरत मुहद्दिस दहलवी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सीधे हिंदुस्तान जाओ और मेरी हदीस का दर्स लोगों को पढ़ाओ, मेरी हदीस का दर्स लोगों को दो, यानी शरीयत का इल्म वहां जाकर फैलाओ। तो हजरत मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो ये इरादा करके आया कि इसी आस्थाने पर पूरी जिंदगी गुजार, मुझे कहीं जाना नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और वही जाकर शरीयत का इल्म फैलाओ। ये आशिक़े रसूल थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चला तो जाऊं लेकिन आपकी जुदाई और मदीने की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं, यहाँ तो रोज दीदार करता हूँ सलात व सलाम पढ़ता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही है ना कि हमारे आस्थाने का दीदार और वहाँ हाजिरी तुमको सबसे ज्यादा महबूब है, तो जाओ हम ये इंतजाम कर देते हैं कि जब हमारी याद आए बैठ कर ध्यान देना और मुराकबा करना, सर झुका लेना, मदीने में हाजिर हो जाओ। हाजिरी तुम चाहते हो हम हाजिरी का इंतजाम कर देते, हुजूर को सब अख्तियार। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अब तो जाऊंगा, जो मेरा मकसद है कि आपने भेजा वो भी मकसद पूरा होगा और मदीना रोजाना हाजिर हो जाऊंगा ये भी मकसद पूरा होगा, सरकार के आस्थाने का दीदार हो जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी नसीहत याद रखना, जिस शहर और कस्बे से तुम गुजरो और तुम्हें यह मालूम हो जाए कि यहाँ कोई आलिम है, कोई बुजुर्ग है, तो उससे मुलाकात करके करते करते हिंदुस्तान पहुंचना। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी खुद लिखते हैं कि जब मदीने मुनव्वरा से मैं चला तो जिस शहर से मेरा गुजर होता था वहां जब मालूम हो जाता था कि यहाँ कोई बुजुर्ग है तो मैं उनसे मुलाकात करके फिर आगे बढ़ता था। फरमाते हैं एक शहर में मैं पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत बड़े वली बुजुर्ग यहाँ पर हैं। फरमाया कि मैं गया उनके घर, उनकी खानकाह में तो देखा बहुत से उनके मुरीदीन चाहने वाले हैं और वो बुजुर्ग रेशम के गद्दे पर रेशम का तकिया लगाकर रेशम का कपड़ा पहने हुए शान से बैठे हुए। रेशम समझे वो जो कीड़े से बनता है, असली आर्टिफिशियल रेशम नहीं, ये मर्दों के लिए हराम है। जैसे सोना पहनना हराम है ऐसे ही असली रेशम का लिबास भी पहनना मर्दों के लिए हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेशम का कपड़ा लेकर मकान से बाहर हुए, काशाने अकदस से सहाबे किराम मस्जिद में थे। फरमाया के देख रहे हो क्या है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह एक हाथ में सोना है एक हाथ में रेशम का कपड़ा है। फरमाया कि आज से मैं मर्दों के लिए इन दोनों चीजों को हराम, ये हराम है उसका पहनना। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं मैं जाकर के हैरान रह गया, इनसे करामतें जाहिर होती हैं, लोग इनको बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन सरापा वो शरीयत के खिलाफ कपड़ा पहने हुए, जबकि शरीयत ने हराम कर दिया है रेशम का कपड़ा पहनना मर्दों से, ये बुजुर्ग कैसे हो सकते? इतना दिल में सोचना था कि वो पीर साहब आवाज देते हैं अब्दुल हक यहाँ से वहां से यहाँ आओ,
सुभान अल्लाह,
वो लोग शरीयत के खिलाफ भी कर रहा है वो आदमी और बगैर बताए नाम भी पुकार रहा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं मैं तो घबरा गया, अल्लाह वली तो वो होता है जो शरीयत का पाबंद है, यहाँ तो शरीयत का सरापा खिलाफ कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि मेरा नाम बता रहा है। फरमाते हैं मैं गया लेकिन परेशान था, वहां बैठा तो शरबत आया, मुझे एक गिलास शरबत दिया और एक गिलास उन्होंने दिया। जब मैंने सुना तो वो शरबत नहीं था शराब, मैंने कहा ये दूसरा मामला, अली और शराब पिए और पिलाए शरीयत के खिलाफ करे लेकिन नाम बता रहा है कि अब्दुल हक इधर आ, ये दोनों मामला जम नहीं रहा, एक तरफ शरीयत का खिलाफ और एक तरफ अब्दुल हक कहते नाम को काट दिया, इंप्रेशन को डाल दिया था उसने। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जनाब मैं ये शराब पीना मुझे गवारा नहीं, ये हराम है शरीयत के खिलाफ। वो नाराज हो गए जनाब, अब्दुल हक देख रोजाना बारगाह रिसालत में तू मुराकबा करके हाजिर होता है, अगर शराब नहीं पिएगा तो मैं हुजूर के दरबार में तुझे जाने नहीं। इतनी बड़ी बोझ, मैं तो जब वाकया पढ़ा तो मेरा दिल दिमाग फटने लगा, शरीयत का खिलाफ कर रहा है और वो बात जो हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं जानता था, यही तीन जाते जानती थी। तो हुजूर ने कहा आना और ये जाते रहे, मुराकबा करते रहे रोजाना। इस फकीर को कैसे मालूम हो गया? अब यहाँ पर अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मैं तो ऐसा समझ रहा था कि जमीन मेरे तले से, लिहाजा मैं क्या फैसला करूं। चलो नाम लेकर के उसने पुकारा, लेकिन हुजूर के दरमियान और मेरे दरमियान जो बात राज थी वो इसको कैसे मैं। फिर कहा फकीर ने पी ले वरना बारगाह रिसालत में हाजिर नहीं होने। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, सुन लीजिए, बारगाह रिसालत में हाजिरी हो न हो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन कानून मुस्तफा
तोड़ना
नहीं होता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं, शरीयत के खिलाफ मैं नहीं कर सकता। ये कह करके वहाँ गुस्से से उठ गए सारे लोग, परेशान किए मौलवी लोग इसी किस्म की हरकत करते हैं, चले गए। लेकिन वो खुद बेचैन थे, राज क्या है। रात को आपने मुराकबा किया, चलो बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे और ये सारा मामला वही हल होगा। मुराकबा किया तो देखा कि आज हुजूर का दरबार दूर नजर आया और मौलाना के और दरबार के बीच में वही फकीर डंडा लेकर आया और हंसता है, कहा अब्दुल हक अब भी मान जा पी ले वरना देख दरबारे रसूल में जाने। सोचो क्या मामला। हजरत ने फरमाया ये तो कभी नहीं हो सकता। तीन दिन यही मंजर रहा, तीसरे दिन तड़प कर पुकारा या रसूल अल्लाह, अभिशनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मदद कीजिए, मामला समझ में नहीं आ रहा। हुजूर ने फरमाया जो वहाँ औलियाए किराम सहाबा दरबार में हाजिर थे कि हमारा अब्दुल हक बाहर आवाज दे रहा है, उसको लेकर आओ। दो चार आदमी आए और उनको पकड़ करके बारगाह रिसालत में पेश कर और फकीर एक तरफ हो गया। जैसे ही अंदर हजरत दाखिल हुए, हुजूर ने फरमाया अब्दुल हक मोहब्बत का दावा और तीन दिन तक ले रहा था, हालांकि सब जानते शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी सारी गुदा सुना दी, या रसूलुल्लाह ऐसा ऐसा हुजूर का एक जलाल था और फरमाया हुआ हुआ कलबुन कलबुन मिन कलाबिन्ना। अल्लाह अब्दुल हक सुनो, वो वली नहीं है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। जरा सोचो कैसी कसौटी है वली को पहचानने
की।
फरमाया सुन, हुआ कलबुन मिन कलाबिन्ना, वो वली नहीं है, जहन्नम का कुत्ता। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को सुकून हो गया कि मैंने शरीयत का दामन थामे रखा तो उसको गुमराही से बच गया।
सुभान
अल्लाह, उसको वली मान लेता मेरा दीन भी जाता, मेरी दुनिया भी जाती। बात खत्म हो गई, तसल्ली हो गई। सुबह के वक्त फिर गए उसके खान पर तो आज दरवाजा बंद, मुरीदीन से बाहर खड़े अदब के साथ। हजरत निकल रहे हैं, दरवाजा खुल रहा है, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, खड़ा हुआ। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मैंने लोगों से पूछा क्यों खड़े हो, आज हजरत दरवाजा नहीं खोल रहे। सुनना ऐसे सही बताना, क्या यहाँ से किसी चीज को तुमने बाहर जाते हुए देखा? एक कुत्ता गया अंदर। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते मैंने कहा सुनो, ये शोबदेबाज का जो इस किस्म की हरकतें करता था, हुजूर ने रात में उसे कुत्ता फरमाया, रब ने उसके पूरे वजूद को कुत्ता बदल करके उसे रखा। इन औलिया वो इजलल जो तकवा और शरीयत की पाबंदी पर वलायत को परखेगा कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये कि नाम बता दिया कदमों पर गिर गए और हुजूर के दरमियान हमारे दरमियान बात क्या हुई है बता दिया कदमों पर गिर गए, हुजूर के दरबार के बीच में खड़ा, कितनी बड़ी बड़ी ये करामत लोग कहेंगे। ये करामत नहीं है मियां, ये हजामत। आज मुसलमान अगर कुरान के मेयार को जिस पर वली को पहचाना परखा जाता है उसी को हाथ में मजबूती के साथ पकड़ के रखेगा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कभी वो गुमराह नहीं होगा और कभी शैतान के फंदे में नहीं आया नहीं आएगा। दिल की बात बता देना, तुझे लड़की होगी तो लड़की होगी, लड़का होगा तो बस बावा पहुँचेगा बावा। यही सारी खराबी आती है, शैतान का सबसे बड़ा बहजावा है। आपको वलायत अगर मानना है तो करामत वो है कि दीन पर इस्तेकामत, हवा में उड़ना ये वलायत नहीं है, पानी पर चलना, ये सब दोस्त ये तो वलियों के बाएं हाथ की बात है। वली के बाएं हाथ का खेल है हवा पर उड़ना, पानी पर चलना, हाथ पर बैठना, ये उनके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल है शरीयत का साइंस। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक सांस मुरीद होने की गरज से आए, लेकिन ये प्लानिंग लेके आए थे कि मैं मुरीद उस वक्त होऊंगा कि हजरत से जब कोई करामत देखूंगा तब मुरीद होगा, और करामत नजर नहीं आई तो वापस आ। एक से एक मुरीदी नोट बेचारा 6 महीने तक रहा, और गौसे पाक को सब मालूम हो जाता था रोशन जमीर के इस प्लानिंग के साथ आ जाए। करामत तो दिन भर में कितनी होती थी, लेकिन गौसे पाक ने करामत दिखाना उसके आंख पर पर्दा डाल दिया कि एक करामत भी इसको नजर नहीं आया। 6 महीना गुजर गए, करामत उसको नजर दिख जानी जाने लगा। आखिरी सलाम करने के लिए हजरत के खानदान के हजरत ने फरमाया मियां आए और ऐसे ही जा रहे हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या? जानते थे फिर भी पूछा। कहा हुजूर सच्ची सच्ची बात यह है कि मैं आया था कोई करामत देखूं तो मुरीद हो जाऊं। तो फरमाया कोई करामत नहीं देगा? कहा नहीं। इरशाद फरमाया मैं घर से बाहर कदम निकालता हूँ, घर के अंदर कदम रखता हूँ, जूता पहनता हूँ, लिबास पहनता हूँ, तुमने ये सब देखा? कहाँ हाँ। कोई कदम मेरा शरीयत के खिलाफ है? एक सांस भी शरीयत के खिलाफ मैंने नहीं दी। फरमाया सबसे बड़ी करामत मियां यही अल इस्तेकामतो फौकल करामत, हर करामत से बड़ी करामत शरीयत पर कायम हो जाना। फिर भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि करामत वाला कुछ होगा। हजरत ने फरमाया वो कोने में हमारा असा रखा है, लेकर आओ। लेकर आया, आपने असा लिया और ऐसे रख दिया, असा सीधे खड़ा हो गया, कोई सहारा नहीं। मैं अगर अपनी लकड़ी रखूं ऐसे तो खड़ी रहेगी, लेकिन हजरत गौसे पाक ने अपना आशा रखा, सीधे खड़ा रहा। फिर उसको इशारा किया तो पूरी लकड़ी, जैसे कि हमारे यहाँ ट्यूब लाइट होता है, ऐसे पूरी लकड़ी से रोशनी निकलने लगी। हजरत गौसे पाक ने फरमाया अच्छा बता, जब तू मेरी खानकाह में आया अभी, सबसे पहले तेरी नजर मेरी लकड़ी पर पड़ी? कहा हाँ। तो उस वक्त तेरे दिल में ये ख्याल आया काश की जाते जाते हजरत अपनी लकड़ी से कोई करामत बता दे। हाँ हाँ यही सोचा
था।
पर माया एक करामत ये कि खड़ी है, दूसरी करामत ये है कि रोशनी है, तीसरी करामत ये है कि तूने जो सोचा था वो बता दिया, कदमों पर गिर गया और हाथ पकड़ करके मुरीद। हजरत ने फरमाया इस्तेकामत सबसे बड़ी करामत है, तो मुरीद नहीं हुआ। जब करामत देखा जब मुरीद हुआ। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये हिदायत पर बहुत देर में आते हैं, और जो लोग करामत छोड़कर इस्तेकामत अला शरीयत को देखते हैं वो बहुत जल्दी हिदायत पर यकीनन। हवा पर उड़ना, पानी पर चलना, ये सब करामत है, लेकिन शर्त ये है कि अगर वो मोमिन शरीयत पर कायम है और फिर हवा में उड़ता है तब वो करामत है, और अगर शरीयत पर कायम नहीं है, फासिक फाजिर है, बेईमान है, काफिर है, और वो हवा पर उड़ता है तो ये करामत नहीं है, ये शोभदा है, जादूगरी है। तो इसलिए हम इस बारगाह में आए, गौसे पाक का ये इरशाद ज़हन में रखना, अल इस्तिकामतो फौकल करामत, हर चीज से बड़ी चीज शरीयत पर डटा रहना। मैंने अपने पीर मुर्शिद को यही देखा, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को एक एक कदम शरीयत के दायरे में उठता था, सोते थे सुन्नत के मुताबिक, उठते थे सुन्नत के मुताबिक, खाना खाते थे सुन्नत के मुताबिक। अरे यहाँ तक हाल ये था, प्यास लगी है पानी नहीं मांगते, क्योंकि हुजूर ने सवाल करने से मना किया कि बिला जरूरत किसी से कुछ मांगना, सवाल करना, ये हुजूर ने मना फरमाया। वहाँ प्यास लगी थी, जरूरत होती थी, लेकिन फिर भी नहीं कहते थे पानी लाओ, क्योंकि इसमें सवाल हो गया, पानी कैसे तलब करते थे, छूम जाओ। बैठे बैठे फरमाते हैं गर्मी ज्यादा है, प्यास लग रही है, मांगना नहीं हुआ, पानी लाओ ये मांगना है, ऑर्डर करना है, और अपनी जरूरत को जाहिर करना, यही है हुस्ने तलब। मांगना भी हो गया है और सवाल का लफ्ज भी नहीं निकला है, फरमाते थे प्यास लग रही है, फौरन खादिम उठते थे पानी ला के पेश करते थे। मैं अक्सर देखता था, जरा भी नाखून बढ़ जाता था तो हजरत को बेचैनी रहती थी जिसको जल्दी खाते, लेकिन ये नहीं कहते थे कि तेरे नाखून बढ़ गए जरा कटवा दो या काट दो, ये तो ऑर्डर हो गया ना। जब मैं बैठता था तो मुझे देखते और यूं नाखून को करते, मैं समझ जाता कि अक्सर ऐसा होता था, ऐसे करते मैं समझ जाता। मेरे पास इतना बड़ा चाकू बहुत तेज उसी के लिए रखा था, मालूम नहीं कौन कौन चोरा के लेके चला, बहुत तलाश किया लेकिन उसी से हजरत का नाखून काटा जाता। ये शरीयत के मुताबिक किस कदर एहतियात था, नींद आती थी तो ये नहीं फरमाते थे कि बिस्तर बिछा दो मैं सोऊं, आज बहुत सुस्ती आ रही है, थक गया हूँ, जिन्ना जिद्दा ही वही ना रहेगा। हम लोग समझ जाते थे कब सोना था, बिस्तर बिछा दिया जाता था तब सो जाते, नहाना होता था तो ये नहीं कहते थे कि मेरे नहाने का इंतजार, नहला दो, सफर करते थे। अक्सर देखा नहाने की ख्वाहिश होती थी तो टोपी उतार के यूं करते, कभी यूं कर बदन को खुजलाते, मैं समझ जाता था कि नहाना है। तीन तीन चार चार दिन नहाए हो जाता था, लेकिन फरमाते नहीं थे कि नहाना है। ये है शरीयत की पाबंदी। तो ये इतनी लंबी चौड़ी तकरीर मैंने इसलिए की है कि आप बारगाहे रौशियत से जा रहे हैं तो ये सबक लेकर।
الحمد لله
الاستقامة فوق الأرض. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے. آپ کو شروع سے رہنا چاہیے.
سلام سب بس میں آیا تیرا کو سلام
کی سننے والے وہ کان دور و نزدیک
کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت کے لاکھوں سلام
اعظم امام تو خاون
قدرت سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام
صلی اللہ تعالی عندنا نورم مبینا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك
السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم شاہد بند
جس کو قبول آمین آمین
اور اس کا ثواب بڑے سے بڑا ہم سب کو عطا فرمائے
آمین.
مولا کریم شریعت کی پابندی اور شریعت کے خلاف کرنے والوں سے
دوری
دوری کا جو ذکر کیا گیا ہے مولا ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق
آمین.
مولا اپنے محبوب بندوں سے ہمیں محبت اور الفت عطا فرمائے
آمین.
اور تیرے دین سے دور رہنے والوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے
آمین.
مولا گمراہی سے بچا کر دین اسلام اور مسلک پر ثبات فرمائے
آمین.
میرے سب بھائیوں کی الہ العالمین حاجتوں کو مرادوں کو پوری
فرمائے.
ان میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں
آمین.
جو الجھنے ہیں سب کو پروردگار عالم غوث کے صدقے میں اولیاء عراق کے صدقے میں خواجہ جنید بغدادی شیرینی سختی کے صدقے میں دانا بہلول علی الخواس کے صدقے میں الہ العالمین ہم سب کی مشکلوں کو حل ہم سب کی مشکلوں کو حل فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل خدا کے واسطے کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل علی سیدنا
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
جزاک اللہ